यस्मिन् भगवान् स्वजन्मनन्दं श्रीकृष्णके श्रीकृष्णका मधुरतम प्रेमरसा श्रीकृष्णके परम मधुरतम प्रेमरसा छलकता हुआ अगाध और अनंत सागर इसलिए अप्राकृतिक रसिक अनुभाव भक्तजन इसमें सदा सर्वदा अवगाहन करते हैं। परम मधु भगवत रस से भरा हुआ स्वादु स्वादु पदे पदे ऐसा अनुपम ग्रंथ बस यह एक ही है, इसकी कहीं भी तुलना नहीं। इसमें पद पद पर परमहंस मेकलम अम्बलम ज्ञानम परम गीयते लौकिक विद्या बुद्धि से रहित से अतीत मुक्त परमहंसों के विशुद्ध परम ज्ञान का गान किया गया है। श्रीमद् भाग एक ही साथ साहित्य दर्पण साहित्य दर्शन इतिहास खगोल परमहंस संहिता इन रस का लबालब भरा हुआ अप्राकृतिक ग्रंथ। इसमें ज्ञान विराग भक्ति सहित निष्कर्म का आविष्कार हुआ है। यह एकमात्र रसिक और भाव सज्जनों के ही संवेद्य आस्वादनीय है। विद्या की तो यह अवधि है, विद्या भगवतावधि। इस उक्ति से ऐसा विदित होता है कि श्रीमद् भागवत के अनुशीलन में ही सारी विद्याओं का पर्यवसान है। श्री राजीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ में भागवत की महिमा बतलाते हुए कहा है, ये सदा सर्वदा यह भागवत श्रीमद् भागवत सदा सर्वदा सबके सिद्ध है। यह असाधुओं को साधु और अत्यंत नीच व्यक्तियों को भी परमोच्च बनाने वाले हैं। श्रीमद् व्यास जी ने वेदों का विभाग कर समस्त पुराणों को प्रकाश कर ब्रह्मसूत्र का प्रणयन कर जब अपरितुष्ट रहे तब नारद जी की कृपा और उनके उपदेश से स्वरचित स्वकृत ब्रह्मसूत्र की अकृत्रिम ब्रह्मसूत्र का अकृत्रिम भाष्य के रूप में इसे समाधि योग में प्राप्त कर अत्यंत संतुष्ट एवं प्रसन्न हुए। इसलिए इस ग्रंथ को समाधि लब्ध ग्रंथ भी कहते हैं। इन्होंने जीवों के कल्याण के लिए ही इस पुराण रूपी सूर्य का को जगत में अवतरण कराया। इस ग्रंथ में द्वादश स्कंद 335 अध्याय और 18,000 लोग श्लोक हैं। सर्ग विसर्ग आदि महापुराणों के 10 प्रकार के लक्षणों से यह समन्वित है। भारतीय धर्मशास्त्र ज्ञान कर्म और भक्ति के अवलंबन से ग्रथित व्याख्यात हुए हैं। इसके भी मूल में वेद का आधार है। वेदांत का वैशिष्ट्य यह है तत्व और ज्ञान में। गीता का वैशिष्ट्य कर्म में, कर्म ज्ञान और भक्ति में। और श्रीमद् भागवत का वैशिष्ट्य विशुद्ध रूप में प्रेमा भक्ति के सत्व प्रकाशन में है। कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के युद्ध के प्रारंभ में गीता का उपदेश है तथा युद्ध के अंत में श्रीमद् भागवत प्रकाशित हुआ। भक्ति विचार से यहाँ गीता का की परिसमाप्ति है। श्रीमद् भागवत का वहीं से प्रारंभ है। सत्यम परम धीमहि के द्वारा श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण हुआ। यस्मद्भागवत ऐसा परम कारुणी और महावदान्य होने पर भी अभक्त विद्वान मंडली के लिए मोहन का तथा भगवत विमुख जड़ीय बुद्धि स्थित व्यक्तियों शास्त्र आदि अध्ययन कर अपने विद्या के जड़ विद्या के गर्भ में गर्भित प्राकृत ज्ञान और जड़ विज्ञान के एक कण लाभ कर अपने को विद्वान होने का अभिमान करने वाले व्यक्तियों के निकट महापूर्वोद महादुर्गम है अथच शरणागत केवल मुख व्यक्तियों के निकट सहज वत्सल परम कारुणिक निगुण तात्पर्य प्रकाशक है। इसलिए प्राचीन तत्वविदों ने श्रीमद्भागवत के संबंध में ऐसा लिखा है सुको व्यक्ति अहम वेदमी सुको व्यक्ति व्यक्ति भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्धया न च टीकया। कुछ आधुनिक तार्किक ज्ञान श्रीमद् भागवत का अनुशीलन न कर अच्छी तरह नहीं कर करने के कारण श्रीमद् भागवत में नाना प्रकार के तर्क उपस्थित करते हैं। वैष्णव के निकट पढ़ने से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने से ऐसे तर्कों की इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी।
वे कहते हैं, पहले तो वो कहते हैं कि श्रीमद्भागवत में जिस तरह का की भाषा, आधुनिक भाषा का प्रयोग किया गया है, उससे व्यासदेव की रचित या नहीं जान पड़ती, व्यासदेव द्वारा प्रकाशित या नहीं जान पड़ती, या किसी बोप देव नामक किसी व्यक्ति के द्वारा यह रचित है। किंतु प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से ऐसा पता चलता है कि बोप देव के बहुत पहले ही आविर्भूत हनुमत और बासना भाष्य बोपदेव के बहुत पहले ही किए गए हैं। शंकराचार्य के गुरु श्री गुरु परम गुरु गौड़पाद ने भी अपने ग्रंथों में श्रीमद्भागवत के लीलाओं का वर्णन किया है और उसमें श्रीमद्भागवत का उल्लेख हुआ है। यह कैसे संभव है? श्रीमद्भागवत वेद पैराग्राफ दूसरा श्रीमद्भागवत वेद कल्प वृक्ष की अस्थि और भलकल आदि सेव चीजों से रहित सचिदानंद रसभन अपक्व फल है। श्री कृष्ण से श्री ब्रह्मा नारद व्यास यीशु आदि महत्वगणों के श्रीमुख पद्म से निकलकर अखंड भाव से जगत में अवतीर्ण है एवं अपराकृत है। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान लीला के पश्चात भगवान के ही श्री नंदनंदन के द्वितीय विग्रह एवं अचिंत परम चमत्कार ली शब्द अच्छा विग्रह के रूप में ये कलयुग में अहत की कृपा वश परवश होकर अवतीर्ण हुए हैं। अतएव स्वयं रूप तत्व श्री कृष्ण की भांति ग्रंथावतार श्रीमद्भागवत भी स्वयं रूप की भांति है। श्रीमद्भागवत सभी निगम और आगमों के सार हैं। महापुराणों के में सर्वोत्तम अमल पुराण, शाश्वत तंत्रों में सर्वश्रेष्ठ परमहंसी संहिता, ये एक ही साथ गायत्री का भाष्य, ब्रह्मसूत्र का भाष्य, श्रीमद् महाभारत का तात्पर्य और वेदार्थ का विस्तार करने वाले ग्रंथ है। भागवत अल्पतरु हैं, उसके रसमय फल भी हैं और मालाकार भी हैं। इसलिए शास्त्रों में शिरोमणि के रूप में प्रतिष्ठित है। कुछ लोग श्रीमद् भागवत को मैथोलॉजी, उपन्यास और किस्सा कहानी की पुस्तक समझते हैं और इसमें तरह तरह के असामंजस्य प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत में कहीं भी या पुराणों में कहीं भी असंगति नहीं है। यदि गूढ़ रूप से देखा जाए तो श्रीमद् भागवत के पठन पाठन से समस्त प्रकार के तर्क दूर हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत में सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वजनिक समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान विद्यमान है। कुछ लोग पुराणों की श्रीमद् भागवत की भाषा को लक्ष्य कर इसको आधुनिक ग्रंथ मानते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत एक नित्य नवीन ग्रंथ है। व्यास जी ने इस ग्रंथ को लिखा नहीं, बल्कि समाधि में इस ग्रंथ को अपने समाधि में अपने हृदय पटल पर इसको दर्शन किया। इसलिए ये श्रीमद् भागवत के रचयिता नहीं बल्कि प्रकाशक हैं। ग्रंथ या ग्रंथ नित्य कृष्ण की भांति ही नित्य और नवीन है। भागवत में भगवान बजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की का वर्णन किया है। भगवान ने जीव कल्याण के लिए के लिए अपने लीलाओं का अवतरण लीलाओं की अवतारणा की है। भगवान रसिक शेखर है, साथ ही साथ वो परम करुण है। रसिक शेखर के कारण वे रसों का प्रेम रस का निर्जास आस्वादन करने के लिए तथा जगत जीवों में रागानुगा भक्ति मार्ग का प्रचलन करने के लिए शिव जगत में अवतीर्ण हुए। उनकी लीलाएं ऐश्वर्य माधुर्य उन दो रूपों में है। श्री राम चंद्र आदि भगवत अवतार जो कृष्ण से किया है वे ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त हैं। ब्रज में श्री कृष्ण के चंद्र ने अपनी विशुद्ध प्रेम परक लीलाओं की अवतारणा कराई। माधुर्य रस में उन्होंने अपनी नर लीला को प्रकाशित किया है, इसलिए साधारण मनुष्य उनकी लीलाओं को समझ नहीं पाते। ऐश्वर्य परक लीलाओं में जहाँ मैं एक खुद जो जीव हूँ और कृष्ण स्वयं भगवान है, ऐसी प्रीति में ऐसी प्रीति के द्वारा भगवान वशीभूत नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत में यशोदा द्वारा दामबंधन लीला छोटे बच्चे होकर के भी उतना इत्यादि का वर्ग आदि सब लीलाएं हैं। जी गोस्वामी चक्रवर्ती ठाकुर अपनी शिकाओं में ऐसी ऐसी शंकाओं का बहुत सुंदर रूप से समाधान किया है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहीं भी कोई असंगति नहीं है, केवल समझने का फेर है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि आधुनिक विश्व में नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद विष्णु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य दीक्षित शिष्य तथा नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद विष्णु भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज संन्यास प्राप्त नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद विष्णु भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जिनको पाश्चात्य देश में प्रभुपाद कहा जाता है, उन्होंने भगवत गीता और श्रीमद्भागवत इत्यादि अनेक ग्रंथों का
अनुवाद कर उसे पाश्चात्य देश में विपुल रूप से प्रचार किया। उन्होंने श्रीमद् भागवत के एक से लेकर 9 स्कंदों का अनुवाद किया, किंतु दुर्भाग्यवशतः दशम स्कंद आरंभ करने के पहले ही वो नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, इसलिए दशम स्कंद पर वो व्याख्या नहीं लिख सके। उनके शिष्यों ने इसके लिए प्रयास किया है। वर्तमान कृष्ण बलराम स्वामी श्रीमद्भागवत के दशम स्कंद की व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका श्रीमद्भागवत का प्रथम खंड मेरे हाथों में है। मैं अधिक विद्वान नहीं, विशेषकर अंग्रेजी का विद्वान नहीं, इसलिए ग्रंथ को संपूर्ण रूप से देख नहीं सकता, क्योंकि उनके का प्रयास बहुत ही उत्कृष्ट है। मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवत अपने गुरु पाद पद में कलीला परिश्रम विष्णु पाद के संभक्ति प्रज्ञान के सब दुष्प्रणाम कलीला परिश्रम विष्णु पाद के संभक्ति वेदांत स्वामी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि अपने प्रयास में सफल हो। अलम इसी विचार इस व्याख्या में इन्होंने जहाँ तक हो सका है अपनी व्याख्या में सनातन जीव स्वामी की वैष्णव टोपी तथा चक्रवर्ती ठाकुर सनातन टीकाओं के अनुसरण करने की चेष्टा की। इसलिए साधक विद्वत मंडली इस ग्रंथ से अवश्य ही बताइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साइलेंट प्लीज, बंद हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दयानंद पुरंदर सु दंडवत।
था।